कार्तिकला चल रहा था 21/9/1967 शतवार को पांचवें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि जो क्रिश्चियन लोग गाते हैं गॉड इज ए लिबरेटर और गाइड, तो इसका अर्थ भी समझे ना। वो कैसे लिबरेटर बनते हैं, लिबरेट करने के लिए दुख से छुड़ाए करके शांति धाम में ले जाते हैं, परंतु फिर झूठ लिखने से, सर्वव्यापी करने से और गीता को खंडन करने से, देखो भारत का कितना महत्व तोड़ जाता है। जबकि भारत में ही बाप आकर के स्वर्ग स्थापन करते हैं, हेविन स्थापन करते हैं, और भारत को ही निमित्त बनाते हैं। क्योंकि निमित्त तो साकार को कहा जाता है, जो बाप हेवनली गॉड फादर सुप्रीम सोल, वो तो सदा निराकार है। जैसे तुम बच्चे आत्मा ज्योति बिंदु हो, बिंदु माने निराकार, बिंदु को कितना भी छोटा बनाया जा सकते हैं, तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है तुम्हारा बाप, ज्योति बिंदु का ज्योति बिंदु, निराकार बाप सदा निराकारी स्टेज वाला है। बल साकार सृष्टि में आता है और आता भी कलयुग के अंत में है, जबकि सारा भारत, भारत के सारे ही भारतवासी एकदम जड़जड़ी भूत हो जाते हैं। कितना दुखी हो जाते हैं, दुनिया वालों की दृष्टि में उनका महत्व ही उड़ जाता है, परंतु जो बेहद का ड्रामा बना हुआ है, चार सीन वाला, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये ड्रामा कल्याणकारी है। नहीं है कि अभी कलयुग के अंत में नहीं आते हैं, वो तो आते ही तब हैं जब वृष्णवंशी जो यादव शास्त्रों में गए हुए हैं उनके द्वारा बुद्ध रूपी पेट में से मिसाइल से एटम बम निकल पड़ते हैं, और वो चतुर्थ विश्व युद्ध कराने के निमित्त बन जाते हैं। सारी दुनिया में कलयुग के अंत में उन यादवों का वर्चस्व हो जाता है। और भारतवासियों का वर्चस्व खलात हो जाता है। तो भारतवासी सतयुग के आदि में सबसे ऊंच थे, भारत सोने की चुड़िया था, परंतु जड़त्व में ही भारतवासियों ने भारत को जड़ जमीन समझ रखा है, जबकि शास्त्रों में जितने भी नाम हैं सब काम के आधार पर। अब जड़ जमीन थोड़े ही कुछ काम करती है, ये तो भारत नाम का कोई व्यक्तित्व है, जो भरत की संतान कहा जाता है। भरत माना ही भरण पोषण करने वाला, उसको विष्णु नाम दाय दे दिया है शास्त्र में। रामायण में नाम भरत दे दिया है और दिखाई दिया है कि वो जो राम भगवान जिनको समझते हैं वो त्रेता वाला राम भगवान, उनका छोटे भाई का नाम भरत रख देते हैं। ये नहीं समझते हैं कि वो जो राम के राम सहित चार भाई हैं, वो ही चार आत्माएं इस विश्व में जो चार मुख्य धर्म फैलते हैं उनके बीज हैं, और उनमें से जो राम वाली आत्मा है वही कलयुग के अंत में निराकार शिव बाप का आधार बनती है। कैसे बनती है? निराकार शिव बाप प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं उसके लिए गायन है कि भारत में भगवान आते हैं। और देशों में क्यों नहीं आते? क्योंकि और देशों में ब्रह्मचर्य का पवित्रता का उतना मान नहीं। ना भारत में आज भी पवित्रता की ब्रह्मचर्य की मान्यता है, खास करके वो निराकार शिव बाप सुप्रीम सोल जिन कन्याओं माताओं को शिव शक्तियां बनाते हैं, उन शिव शक्तियों की कलयुग के अंत में देखो क्या हालत हो जाती है। उन कन्याओं माताओं को शास्त्रों में गौ का रूप दे दिया, वास्तव में गौ तो जानवर होती है। अब भगवान कोई आकर के जानवर गऊओं को चराएगा क्या? है भगवान जो ऊंच से ऊंच आत्मा है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाली वो सुप्रीम सोल तो मनुष्यों को आकर के सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाएगा या जानवरों को सुनाएगा? नहीं, वो तो इस सृष्टि पर आकर के भारत की कन्या माताओं को जो ज्ञान सुनाता है, उस ज्ञान को सुनने में कन्याएं माताएं ही सबसे आगे जाती है। लौकिक दुनिया में भी देखो, कन्याएं माताएं अच्छी पढ़ाई पढ़ती हैं या पुरुष ज्यादा अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं? वर्चस्व भले दुनिया में पुरुषों का है, पुरुषों का राज्य है, लेकिन पढ़ाई पढ़ने में कन्याएं ही आगे जाती हैं। क्यों जाती है आगे? कारण क्योंकि पवित्र बुद्धि होती है। और खास करके कन्या माताओं की तो खास पवित्र बुद्धि होती है, क्योंकि और देशों में कन्याओं की इतनी सुरक्षा नहीं करते हैं जितनी भारत में करते हैं, क्योंकि भारतवासियों में अभी भी ये भावना भरी हुई है कि यही कन्याएं भारत की देवियों के रूप में पूजी जाती है। क्या भले कहते हैं उनको देवी माता, लेकिन जो चित्र बनाते हैं उन चित्रों में कोई भी माता के रूप में नहीं दिखाई देती। क्या कहते हैं ना, धरती माता, पृथ्वी माता, उसका तो शास्त्रकारों ने ही अर्थ किया है, पृथिव्या अतिधिपति, जो विस्तार को पाती है, चौड़ी हो जाती है, उसको पृथ्वी कहा जाता है। अब कन्या थोड़ी विस्तार को पाती है, जब तक माता न बने और शिव बाप आते हैं तो उन कन्याओं माताओं को वो जो विकारी माताएं बन जाती हैं द्वैतवादी द्वापर युग में, जब से दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल इस सृष्टि पर विधर्मियों के द्वारा पनपते हैं, तब से उन माताओं की दुर्गति होती है। इसलिए कहते हैं कि धरणी माता का भार जब बहुत बढ़ जाता है, पापों का बोझ चढ़ जाता है धरणी पर रहने वाले मनुष्यों के द्वारा, तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं धरणी का बोझ उतारने के लिए, और उन कन्याओं माताओं को खास निमित्त बनाते हैं। उनमें भी माताओं के ऊपर तो कंट्रोल होता है पतियों का, कन्याएं तो स्वतंत्र होती है, और वो कन्याएं पवित्र होने के कारण जो परम पवित्र इवर प्योर सुप्रीम सोल गॉड फादर गाया हुआ है, उसकी वाणी को जल्दी समझ लेती है, जल्दी ग्रास्प करती है, सिर्फ सुनती ही नहीं, उनको समझाया जाए तो समझती भी है, बशर्ते कि देहधारी धर्मगुरुओं के चुंगल से छूट जाएं तो। बताया कि उन कन्या माताओं को शास्त्रों में गऊओं के रूप में क्यों दिखाई दिया, इसलिए दिखाई दिया कि ये भारत की ही कन्याएं माताएं हैं जिनको जिस खूंटे से जीवन में बांध दिया जाता है, जीवन भर सीधी साधी बनकर उसी खूंटे से बंधी रहती है। और सभी जानवरों के बीच में गाय तो खास करके भारतवासी, भारत की जो गौएं हैं, भले यादगार रूप में जानवर गौएं हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिख दिया है कृष्ण ने जानवर गौओं को चराया। अब उन जानवर गौओं की बात नहीं है, ये भारत की वो शुद्ध ज्ञान का दूध देने वाली कन्याओं माताओं की बात है जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान में अपनी मनमत के आधार पर मिचलती नहीं की थी, फिर भी बाप आते हैं तो उन शक्तियों को, शिव शक्तियों को निमित्त बनाकर सारी दुनिया की, सब मनुष्य आत्माओं की सदगति करते हैं, आते ही हैं गति सदगति देने के लिए, लिबरेटर और गाइड बनकर भी रास्ता बताते हैं। तो फिर सब तो नहीं सुधरते हैं है? कलयुग के अंत में ये सारी दुनिया के प्राणी मात्र, सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं है, सब तामसी बन जाते हैं, क्योंकि ये नियम है सृष्टि का कि जो भी आत्माएं आत्मलोक से उतरती जाती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर और उत्तरोत्तर जनसंख्या की वृद्धि होती जाती है, सतयुग आदि से जो आत्माएं जन्म लेती आई हैं, वो भी जन्मरण के चक्र में आती रहती हैं, और आत्मलोक से आने वाली आत्माएं जो ढेर की ढेर की तादाद में, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लगातार उतरती रहती हैं, वो भी ऐड हो जाती है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। बहुत जनसंख्या की कलयुग के अंत में वृद्धि हो जाती है और दुख दर्द बढ़ेगा या घटेगा, श्रेष्ठ आत्माएं सतयुग में, देवात्माएं थोड़ी होती है, और कलयुग के अंत में सुप्रीम सोल बाप आते हैं है, भारत को खास स्वर्ग बनाते हैं, और जो विदेशी धर्मखंड हैं और उन धर्मखंडों में रहने वाली मनुष्य आत्माएं हैं वो उतना पहचान नहीं पाती है, उनको श्रद्धा विश्वास कलयुग के अंत में आकर के उखड़ जाता है, क्योंकि जो द्वैतवादी द्वापर युग से अलग अलग धर्मों की आत्माएं आती हैं, धर्म पिता हैं, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने को ही सर्वे सर्वा साबित करती है, जबकि सच्चाई तो ये है, यही वास्तविकता है कि उन धर्म पिताओं के देह अभिमानियों के आने के बावजूद भी ये सृष्टि दुख की ओर बढ़ती जाती है, तामसी बनती जाती है, दुखदाई बनते जाते हैं। और मनुष्य दुखदाई बनेंगे तो मनुष्य के ऊपर सारे प्राणी निर्भर हैं। मनुष्यों को मनोबुद्धि होती है तो वो वाइब्रेशन बना सकते हैं, वातावरण बनाते हैं। जैसा वातावरण मनुष्य बनाएंगे वैसे अन्य प्राणी मात्र भी बनते जाते हैं। तो ये किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि इस दुनिया की हर चीज, चाहे देवात्माएं हो, चाहे मनुष्यात्माएं हो, ऋषि मुनि हो, राक्षसी आत्माएं हो, जो सिर्फ दुख देती हैं, वो सब चार अवस्थाओं से गुजरती है, सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक। जैसे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सतयुग 16 कला संपूर्ण होता है, त्रेता 14 कला संपूर्ण होता है, द्वापर 8 कला संपूर्ण होता है ज्यादा से ज्यादा, और कलयुग ज्यादा से ज्यादा आरंभ में 4 कला संपूर्ण और अंत में कलाहीन हो जाता है। तो बात क्लियर हो जाती है कि जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं, रोशनी कम होती जाती है, ऐसे सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं युगानुसार उत्तरोत्तर सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो में गिरती है। तामसी बनते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी बहुत दुख देते हैं। कलयुग के अंत में ही भगवान को आना होता है, सुप्रीम सोल गॉड फादर को, क्योंकि तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण इस चार युगों वाली सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। और प्राणी मात्र की आत्माएं वो सब जन्म मरण के चक्र में आती है, इसलिए पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाती है। तो भूल जाती हैं तो क्या कहेंगे, वो ज्ञान की रोशनी जो है वो छीण होती जाती है, अज्ञान अंधकार बढ़ता जाता है या घटता जाता है, घट है ऊंचा होता जाता, अज्ञान अंधकार बढ़ता जाता है। बहुत अज्ञान अंधकार में सब जैसे अंधे हो जाते हैं, ज्ञान न होने कारण जो भी कर्म करते हैं वो सब पाप ही पाप कमाते हैं। तो समझना चाहिए ना कि सुप्रीम सोल गॉड फादर त्रिकालदर्शी को, जो कि अकूत ज्ञान का भंडार है, वो कब आना चाहिए, सतो प्रधान सतयुग 16 कला संपूर्ण में आना चाहिए, त्रेता में आना चाहिए, द्वैतवादी द्वापर युग में आना चाहिए, कि जब कलयुग के अंत में सारी दुनिया तामसी बन जाती, इतनी तामसी बन जाती है कि दुनिया की ज्यादा से ज्यादा आबादी, जो बताया चार मुख्य धर्मों में से देवता, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस, उनमें सबसे अंत में आने वाला जो क्रिश्चियन धर्म है, जिसे शास्त्रों में यादव बताया गया, क्या यदुवंशी, क्या किया उन यदुवंशियों ने, है एटमिक एनर्जी तैयार की, मिसाइल से बनाए, जिनका नाम शास्त्रों में मूसल दिया हुआ है। ऐसा भयंकर चतुर्थ विश्व युद्ध करने की निमित्त बन जाते हैं कि जिसमें सारी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा तादाद में फैले हुए वो सारे क्रिश्चियन रूपी यादव खुद भी खलास हो जाते हैं और सारी दुनिया को खलास कर देते हैं। जैसे कोई जिस वृक्ष पर, जिस डाली पर बैठा हो, उसी डाली को काट दे तो खुद भी गिरेगा। ऐसे ही ये सच्च वृक्ष है, ये सच्च वृक्ष है जो गीता में बताया है, इसका नाम दिया है अश्वत्थ वृक्ष। अश्व इत्थ, अश्व माने घोड़ा, क्या जानवरों में कौन सा ऐसा जानवर है जो मनुष्यों के काम आता है और बड़ा तीव्र धावी होता है, है? घोड़ा, उसको अश्व कहा जाता है। वास्तव में उस घोड़े की बात नहीं है, ये तो मन रूपी घोड़ा है, क्या हर मनुष्य आत्मा के अंदर ये मन रूपी घोड़ा काम करता है। क्या काम करता है? कहते हैं ना, तेरा मन दर्पण कहलाए। मन जो है ना, वो अगर स्वच्छ बन जाए तो उस मन दर्पण में अपने 84 के जन्मों को देखा जा सकता है। मनुष्य ही देखेगा, जानवर थोड़े देखेंगे। जो शास्त्रों में दिखाई दिया कि भगवान सुअर का अवतार लेकर आया, घोड़े का अवतार लेकर आया, मछली का अवतार लेकर आया, अरे ये जानवर क्या उनको मन कहेंगे, हैं? नहीं, उनको मन बुद्धि कहेंगे क्या? नहीं, वो थोड़े ही समझेंगे ज्ञान की बातों को। भगवान आएगा तो मनुष्यों को ज्ञान सुनाएगा या जानवरों को, जानवरों के रूप में आकर के जानवरों को ज्ञान सुनाएगा? तो ये जो ऋषि मुनि हुए ना, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं ना, द्वैतवादी द्वापर युग से, वो सब ऋषि मुनि जो पहले सत्युग त्रेता में देव आत्माएं थे, वो द्वैतवादी द्वापर युग से इन विधर्मी धर्म पिताओं के बातों के चक्कर में आकर के, इनसे प्रभावित होकर के ये ऐसे कर्म करने लगे कर्म इंद्रियों से, जिन्हें भ्रष्ट इंद्रियां कहा जाता है। नहीं तो देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों से क्या सुख लेते थे और सृष्टि की वृद्धि होती थी। जब से द्वैतवादी, ये देह अभिमानी, दूसरे दूसरे के धर्म के धर्म पिताएं आने लगे तो उन्होंने जो कर्म सिखाया ना, भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म, कर्म जिनमें मुख्य इंद्रिय है काम इंद्रिय, जिसका शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने थोड़ा सा अनुभव करके लिखा भी है कि भगवान जब कलयुग के अंत में आते हैं सुप्रीम सोल गॉड फादर, तो काम का विनाश कर देते हैं। उसको उन्होंने समझ लिया काम देव था, कोई देव नहीं होता है। क्या देव को भगवान को भस्म करने की दरकार नहीं होती है? ये तो हर मनुष्य आत्मा के अंदर वो ही काम इंद्रिय भाव की बात है जो सबको अंधा बना देता है। द्वैतवादी द्वापर युग से वो ऐसे कर्म करने में प्रवृत्त हो जाते हैं जिस काम इंद्रिय का सुख लेने के लिए सारे मनुष्य मात्र जी तोड़ के कर्म इंद्रियों से कर्म करना शुरू करते हैं। जबकि भगवान बाप आकर के बताते हैं कि बच्चे इतना प्रयास करने की जरूरत, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। क्या क्यों? क्योंकि मैं जिस दुनिया की स्थापना करता हूं, नई दुनिया स्वर्ग की, सतयुग त्रेता की, जिसमें देवताएं होते हैं, वो सब आत्माभिमानी होते हैं। अरे भाई, वो आत्माभिमानी अपनी भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा को याद करते हैं, लगातार वो स्मृति रहती है। अपने को देह नहीं समझते, इसलिए आत्मिक स्थिति पक्की होने के कारण हरेक देवात्मा का भरण पोषण का कार्य प्रकृति ही करती है। क्या सुधरे हुए देवात्माएं मनुष्य होते हैं सतयुग त्रेता में, उन्हें कोई कर्म नहीं करना पड़ता। ये जो धरणी है ना, प्रकृति किसे कहा जाता है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांचों का जो संघात है से प्रकृति कहा जाता है। प्रकृष्ट कृति, प्रकृति वो है जड़ प्रकृति। क्या पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश जड़ प्रकृति, परंतु जैसे जड़त्व बुद्धि मन बुद्धि वाले प्राणी अपने आप सुधरते हैं, नहीं, मनुष्य के आधार पर सुधरते हैं, तो वो जड़ प्रकृति भी, उसकी भी मानिंद ये देवात्माएं हैं पांच विशेष। क्या जल देवता, पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, आकाश देवता, ये पांच विशेष जो मनुष्य आत्माएं हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो सतयुग के आदि से लेकर के सात्विक स्टेज में पार्ट बजाने वाली थी, वही नीचे गिरते गिरते सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो द्वापर में, क्योंकि रजो वृत्ति की आरंभ ही तब होता है जब, तो भारत में कहा जाता है ना, स्त्रियां जो हैं रज को धारण करने लगती है, माना रजस्वला हो जाती है, उनको कहा जाता है डिस्चार्ज होता है उनकी शक्ति का, तेजी से सारा खून चला जाता है, शरीर की जो शक्ति है वो ही नष्ट होती है। अब ऐसे नहीं है कि स्त्रियों में ही रजोधर्म होता है, स्त्रियों में रजो धर्म इसलिए बताया कि उनमें देहभान ज्यादा होता है स्त्री चोले में, और पुरुषों में देहभान उतना नहीं होता है। इसलिए पुरुष तन में भगवान को आना तो पड़ता है, लेकिन जिस पुरुष तन में आते हैं उसको भी काम लेने के लिए, इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए, परिवर्धन करने के लिए उन्हें उस पुरुष को भी नाम देना होता है काम निकालने के लिए, परम ब्रह्म। क्या? कैसा ब्रह्मा? महत ब्रह्म, गीता में बताया मत योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता, क्या कौन है? महत ब्रह्म, बड़े के बड़ी माँ, जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर उससे बड़ी कोई माता का पाठ बजाने वाली होती ही नहीं। तो एक में ही आता है, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी आता है, सर्वव्यापी होता है, और उसे एक ही मनुष्य तन के द्वारा वो माता का पाठ भी बजाता है, मुख्य माता का पाठ। और वो मुख्य माता के द्वारा जो पैदाइश होती है, है भगवान बाप आते हैं तो परम ब्रह्म के द्वारा, बड़े ब्रह्मा के द्वारा, पक्के ब्राह्मण ही पैदा करेंगे ना? क्या कि नीची कोटि के ब्राह्मण पैदा करेंगे? शास्त्र में दिखाए तो हैं कि ब्राह्मणों की नौकुरियां होती हैं, एक से एक ऊंची और नीचे से नीची। वास्तव में वो कलयुग के अंत में ही, जब भगवान बाप ब्रह्मा के तन में आते हैं, जिनको पांच मुख दिखाए जाते, उनमें जो ऊर्ध्वमुखी मुख है वो ही परम ब्रह्म है, ऊपर की ओर मुख रहने वाला। क्या? कैसा मुख? ऊपर की ओर माने नीचे धरणी की ओर नहीं, जिस धरणी का माता का स्वभाव है क्या, नीचे की ओर जाना। और धरणी नीचे जाएगी जहां मनुष्य मात्र रहते हैं, मनुष्य की आत्माएं प्राणी मात्र भी रहते हैं, जब धरणी नीचे जाएगी तो उस पर रहने वाले जीव जंतु भी नीचे ही जाएंगे। जिसको निमित्त बनाया, नई सृष्टि की, नई ते नई सृष्टि की रचना करने के लिए, वो आत्माएं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण बनती हैं। क्या? जो ज्ञान सूर्य बाप इस सृष्टि पर आते हैं, चैतन्य ज्ञान सूर्य, जड़ सूर्य नहीं, वो तो यादगार मात्र है, वो इस सृष्टि पर आते हैं तो जो ज्ञान का प्रकाश देते हैं, उस ज्ञान के प्रकाश को उस ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के द्वारा पहले पहले वो ही आत्माएं धारण करती है। कौन? जो सृष्टि की बीज रूप आत्माएं कही जाती है, कहेगी, वो बीज रूप आत्माएं मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में श्रेष्ठ थी श्रेष्ठ आत्माएं, जो बीज के रूप में पाठ हो जाती है। कोई परिवार होता है, जैसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम भी बनता है, सारी वसुधा एक कुटुंब बन जाती है, तो उसका कोई बीज होता होगा ना। तो मनुष्य सृष्टि में वो जो बीज रूप आत्मा है, जिसका नाम भारत है, है, जिस भारत के नाम पर महाभारी महाभारत युद्ध गया हुआ है, क्या वो सेंट्रल प्लेस है? वो मनुष्य किस बात का? महाभारी महाभारत युद्ध का, जो गीता में लिखा है ना, धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे, है ना, धर्म के क्षेत्र में है और अच्छे बुरे कर्मों के क्षेत्र में। अरे खड़े हो जाओ, वो जो क्षेत्र कहा जाता है ना, उसको भी गीता में बताया है। वो गीता इस सृष्टि रूपी रंगमंच का जो भी ग्रंथ शास्त्र तैयार हुए हों, चाहे वो भारती में बने हुए शास्त्र हों, चाहे वो विदेशों में बने हुए कुरान या बाइबल शास्त्र हों, या सिख धर्म के धर्म ग्रंथ हों, उन शास्त्रों में सबसे पहला दुनिया का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सात्विक शास्त्र कहा जाएगा। परंतु आज के जो शास्त्र मिल रहे हैं, चाहे गीता हो चाहे बाइबल हो कुछ भी हो, वो सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं। क्या धर्म पिताओं ने नहीं बनाए? धर्म पिताएं तो आते हैं, ओरली मुख से सुनाते हैं। ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ऊंची से ऊंचा हेवनली गॉड फादर सृष्टि पर आता है कलयुग के अंत में, जब नई दुनिया बननी होती है, बनानी होती है और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए एटमिक एनर्जी तैयार हो जाती है, उस समय आकर के वो गुप्त रूप में स्थापना का कार्य करता है। जैसे परिवार में बच्चे पैदा होते हैं ना, है, तो बोला कि मैं माता में गर्भ डालता हूं, ज्ञान का बीज डालता हूं, तस्मिन गर्भम दधामि, हम बताया ना अभी, उस माता में ज्ञान का बीज। कौन सी माता में? वही भारत नाम की माता, जिससे माता का काम पहले लेना है। परिवार में रचना करनी होती है तो पहला पहला प्रैक्टिकल पार्ट किसका दिखाई देता है? माता का दिखाई देता है। बाप का थोड़ी दिखाई देता है कि उसने बीज कब डाला, वो तो माता ही जानेगी, वो परम ब्रह्म जानता है, उसी की बुद्धि में बैठता है, भारत माता की ही बुद्धि में बैठता है। परंतु वो तन से तो पुरुष है, लेकिन काम लेने के लिए नाम दिया। क्या क्या नाम दिया? परम ब्रह्म। तो उस परम ब्रह्म से जो परम ते परम पार्ट बजाने वाली, सच रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो बीज रूप आत्माएं कही जाती हैं रुद्राक्ष, रुद्रगण। क्या रुद्र कहा जाता है? इस सृष्टि पर भगवान बाप आते हैं, पहले माता के रूप में सौम्य पार्ट बजाते हैं, क्या शांत मृदुल पार्ट बजाते हैं, मीठा पार्ट बजाते हैं। अब माता भी तो देखो आज दुनिया में कैसी दुर्गति की हुई है, सत्ता पर, देश देश की सत्ता में ज्यादातर माताएं बैठी हुई हैं, कन्याएं बैठी हुई हैं कि पुरुषों का वर्चस्व हो गया है। किसका हो गया है? बोलते का ही नहीं है, पुरुषों का हो गया। और पुरुष भगवान की भाषा में कहा जाता है कि पुरुष वृत्ति जो है वो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। क्या क्यों बन जाते हैं? क्योंकि काम विकार का जनून जब चढ़ता है, कामांग का, तो वो अपनी मनमानी करते हैं, कन्याओं से पूछते नहीं कुछ, माताओं से कुछ पूछते नहीं, कि हमें कैसे करना है, क्या करना है और कहां तक करना है। अति आचार करते हैं, आचरण कर्म इंद्रियों का अति अत्याचार करते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों का जो भ्रष्टाचार है वो इतना बढ़ता जाता है कि कन्याएं माताएं अंदर अंदर से बेवकूफ हो जाती हैं। तब ही भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। खास भारत में जो कन्याओं माताओं की यादगार भारत में नदियों में स्नान किया जाता है, वो जड़ शरीर के स्नान की बात नहीं है। क्या जो जड़ शरीर में प्रकृति के मध्य में गीता में लिखा ना, प्रभोर मध्य प्राण आवेश सम्यक, प्रकृति के मध्य में जो आत्मा बैठी हुई है उस आत्मा को ज्ञान देते हैं, शरीर का ज्ञान नहीं। क्या इस देह का ज्ञान तो देहधारी मनुष्य बहुत द्वैतवादी द्वापर युग से मनुष्य गुरुओं के द्वारा सीखते चले आए, जिससे दुनिया तेजी से दुख की ओर बढ़ती है। भगवान बाप तो आत्मा का आकर सुधार करते हैं। शरीर में जो जड़ शरीर है ना, पुतला है, मिट्टी का पुतला कहो क्या, जब आत्मा इसमें से निकल जाती है, वही आत्मा अरे जिसकी यादगार में कन्याएं माताएं भारत की आज भी बिंदी लगाती देखी जाएंगी, उनमें भावना होती है। पुरुषों में उतनी भावना नहीं है तो वो परंपरा भुला दी कि हम ज्योति बिंदु हुआ। तो वो आत्माओं को भगवान बाप आकर के जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान की रोशनी देते हैं, भारत माता के द्वारा उनमें अव्वल नंबर पार्ट बजाने वाली वो बीज रूप आत्माएं रुद्र के बच्चे रुद्राक्ष कहे जाते। क्या अक्ष माने आंख, क्या कहे जाते हैं, रुद्र की आंखें। रुद्र माना जो रौद्र रूप भी धारण करता है। पहले पहले तो बच्चों को सौम्य रूप से ब्रह्मा के रूप में पढ़ाई पढ़ाता है, ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुनाता है। वो वेद नहीं जो द्वैतवादी द्वापर युग में है विधर्मी धर्म पिताओं के प्रभाव में आकर के वो दाढ़ी मूंछ वाले उन ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, नहीं वो दाढ़ी मूंछ तो भिखारियों को होती है। वो ही ऋषि मुनि हैं जो सतयुग त्रेता में देवताएं थे, क्या कम कला की देवताएं बने है, और वो ही कम कला की देवताएं इन द्वैतवादी द्वापर युग में आने वाले धर्म पिताओं के संसर्ग संपर्क में आकर के प्रभाव में आकर के इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो स्वयं भी प्रयास करते हुए भी काम इंद्रिय के कर्म से अप्रभावित नहीं रह पाते और खुद भी नीचे गिरते हैं मनमाने तरीके से शास्त्र लिख करके, क्योंकि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है। शास्त्र भी एकदम ठेठ द्वापर के आदमी जो लिखे गए थे, जिनमें पहला पहला शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता, क्या भगवान का गाया हुआ वो ज्ञान का गीत जिसने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दी थी श्रीमद्, उसका नाम पड़ा है श्रीमद् भगवत गीता जो मनुष्य गुरुओं ने लिखी है। क्या तो अंतर होगा ना, भगवान ने या धर्म पिताओं ने जो डायरेक्ट मुख से सुनाया और बाद में सैकड़ों सालों के बाद मनुष्य गुरुओं ने उसको लिखा, भोजपत्रों पे लिखा हो, कागज पे लिखा हो, तो अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अंतर पड़ जाता है, उसमें मिक्चरिटी हो जाती है संकल्पों की, विकल्पों की, और काम विकार से प्रभावित होने के कारण वो दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनि जो हैं, वो भी उसमें अपना प्रभाव पुरस्कार करने के लिए देह अभिमान में आकर के बस वो अपने अपने जिन देवताओं को उन्होंने इष्ट समझा है बस उन्हीं की महिमा करते हैं। अब वो देवता है तो नंबर वार क्या कि एक जैसी होते हैं नहीं, तो वो देवात्माएं उनको देवता मनुष्य से किसने बनाया? अरे शास्त्रों में लिखा भी है नरको नारायण भगवान आकर के बनाते हैं। वो सुप्रीम गॉड फादर जो हेवनली गॉड फादर कहा जाता है वही सृष्टि पर आकर के मनुष्यों को क्या बनाता है? देवता बनाता है। परंतु वो देवता भगवान की पढ़ाई हुई पढ़ाई अब विचारी रूप से नहीं पढ़ती क्या है? एक से नहीं सुनते, जो मिटमैट होते हैं ना देहधारी देह के संबंधी उनमें घुसड़ पुसड़ कॉन्फ्रेंस करते ही रहते हैं। और वो कॉन्फ्रेंस या कई कारण उनकी बुद्धि में जो ईश्वरीय ज्ञान है वो उड़ता रहता है। तो नौगुरी के ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, नौ प्रकार की देवात्माएं बन जाते हैं। क्या तो सतयुग में जो भी पीढ़ियां चलेंगी देवताओं की वो उत्तर उत्तर कम कलाओं वाली होंगी या 16 कला संपूर्ण बनी जाएंगी? कम कलाओं वाली। वो ही देवात्माएं जो हैं द्वैतवादी द्वापर युग में जन्म लेते लेते जब आते हैं इन विधर्मी धर्म पिताओं से प्रभावित होकर के क्या ऐसे ऐसे ये शास्त्र लिखते हैं जिनमें अंधश्रद्धा की भरमार है। क्या कैसी अंधश्रद्धा? एक तरफ कहते हैं त्रेता में राम का राज्य था, सब बड़े सुखी थे, और दूसरी तरफ क्या दिखा दिया? अरे राजा राम की स्त्री दस सिरों वाले रावण ने चुरा ली। और अब दस सिरों वाला रावण कैसे पैदा हो गया है? ये बुद्धि में कभी नहीं आता। और फिर उस दस सिरों वाले रावण के कुल में जन्म लेने वाले भी तो दस सिर के होने चाहिए। कोई मनुष्य दस सिर का होता है क्या है? नहीं। हाँ देवताओं को कपोल कल्पित जो दिखा दिया है, जैसे भगवान विष्णु का विराट रूप दिखाया है, कितने ढेर सारे मुख दिखा दिए, ब्रह्मा का स्वरूप दिखाया है, चार चार पांच पांच मुख दिखा दिए है। अरे ये तो अम्माओं की यादगार है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो नंबर वार माताओं को निमित्त बनाते हैं नाम देकर ब्रह्मा। क्या पुरुष तन में भी प्रवेश करते हैं तो भी नाम क्या देते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा माने अपने अपने कुल में जो भी ब्राह्मण पैदा हुए तो उनमें विशेष पाठ बजाने वाली माता है। तो परंपरा पड़ गई भारतवासियों में कि भारतवासी भी आज तक भी है परिवार में एक स्त्री मर जाती है माता चली जाती है तो दूसरी माता को निमित्त बनाते हैं, दूसरी माता चली जाती है तीसरी माता को निमित्त बनाते हैं, तीसरी चली जाती है चौथी पांचवी भी बना लेते। वो परंपरा देवताओं के बाद कुछ न कुछ इस्लाम धर्म ने भी फॉलो किया और उन्होंने भी ये नियम बना दिया क्या कि ज्यादा से ज्यादा चार पांच शादियां कर सकते हैं। अरे अब ऐसे थोड़े है कि वो पांचों माताएं कोई
एक साथ महत्व को प्राप्त करने वाली बन जाएंगी। पहली माता को जो इतना महत्व दिया जाएगा उतना दूसरी माता को महत्व मिलेगा क्या? है मिलेगा नहीं, क्योंकि पहली माता जो बीज धारण करती है वो लंबे समय की पवित्रता का बीज धारण खुद भी करती है, और जिससे बीज लेती है वो भी लंबे समय की पवित्रता को धारण करके फिर नौजवान बनता है, तब निमित्त बाप बनता है। तो उसकी बराबरी तो कोई दूसरा बोली दूसरी माता कर सकती है क्या? कर सकती है नहीं। उनसे पैदा होने वाला खून का बच्चा उतना पावरफुल हो ही नहीं सकता। इसलिए भारत में जो भगवान ने परंपरा डाली कि परम ब्रह्म से पैदा होने वाले जो बच्चे हैं रुद्रमाला के बीज रूप आत्मा है, वो रुद्राक्ष के मणके के रूप में पूजी जाने वाली आत्मा है, इस मनुष्य सृष्टि में जन्म जन्मांतर राजा बनती आई है। क्या? फर्स्ट कुरी के ब्राह्मण, नौ कुरियों के ब्राह्मणों में से असल सूर्यवंशी ब्राह्मण, ज्ञान सूर्य बाप की प्रैक्टिकल पार्ट की सन्मुख पार्ट बजाने वाली आत्मा है। तो विशेष पावरफुल हुए ना पहलौटी के बच्चे, तो आज भी परंपरा है। और सदियों से ये राजाओं में परंपरा चली आ रही है भारत में, खास विदेशों में भी रही। क्या? कि राजाओं ने अपने बड़े पुत्र को निमित्त बनाया राज्य देने के लिए। तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई? अच्छी परंपरा है या गलत परंपरा है? अच्छी परंपरा है। तो परंपरा किसने डाली? वही हेवेनली गॉड फादर ने, सुप्रीम सोल ने आकर के इस सृष्टि पर भारत नाम के व्यक्तित्व के द्वारा प्रैक्टिकल में ये परंपरा डाली। और सिर्फ यही नहीं कि वो आकर के अव्वल नंबर जो वसुधैव कुटुंबकम तैयार करता है, उसकी अव्वल नंबर आत्माओं को ही तैयार करता है। नहीं, जो नंबर वार ब्रह्मा और बनते हैं, चार मुख वाले और भी तो ब्रह्मा है ना, उन मुखों के द्वारा भी क्या उन चार विशेष धर्मों की क्या फाउंडेशन डालता है। कौन कौन से चार विशेष धर्म? देवता, जो सत्युग में 16 कला संपूर्ण देवताएं बनती है, वो बीज रूप आत्मा अलग जो रुद्राक्ष के मणके कहे जाते हैं, रुद्र के डायरेक्ट बच्चे, सन्मुख को पढ़ाई पढ़ने वाले, वो अलग, वो 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज वाले हैं। क्या? कलातीत स्टेज का सुख लेते हैं देवताएं, तो फिर भी ज्ञान इंद्रियों का सुख लेते हैं, और वो बीज रूप आत्माएं तो क्या कर्म इंद्रियों के सुख की तो बात ही नहीं, वो तो भ्रष्ट इंद्रियों की बात हो गई। जिन भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करते हैं मनमाने तरीके से, ज्ञान इंद्रियों का भी सुख त्याग देते हैं क्या? वो भी नहीं लेते। ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि इंद्रियों से परे की स्टेज, इंद्रियातीत सुख प्राप्त करते हैं। क्या? कैसे? दसों इंद्रियों को जो कंट्रोल करने वाला मन है, उस मन को कंट्रोल करके, जो मन घड़ी घड़ी चंचलता से इधर से उधर, उधर से इधर भागता ही रहता है, कोई मनुष्य मात्र का मन, मन माने संकल्प विकल्प शक्ति, वो संकल्पों की विकल्पों की शक्ति किसी की एकाग्र नहीं देखी जाती। कोई मनुष्य मात्र ये नहीं कहेगा कि हमने संकल्पों के ऊपर जीत पा ली, मन को पूरा कंट्रोल कर लिया, मन एकाग्र हो गया, या मन आत्मिक स्थिति में ज्योति बिंदु की स्थिति में स्थिर हो गया। ऐसी ज्योति बिंदु की स्थिति में स्थित होने वाली जो आत्माएं हैं, जो अतीन्द्रिय सुख भोगती हैं, कलातीत सुख भोगती हैं, 16 कला से भी ऊंची स्टेज का सुख भोगती हैं, उन आत्माओं की तो बात ही अलग है। बाकी और भी चार वर्णों की चाय स्थापना कलयुग के अंत में ही भगवान आकर करते हैं। क्या देवात्माएं और कौन सी? छात्र धर्म की आत्माएं, क्षत्रिय आत्माएं, क्षत्रियत्व प्राप्त करने वाले जो जन्म जन्मांतर राजाएं भी बने हैं। क्या कौन सी आत्माएं हैं वो जो त्रेता की क्षत्रिय गाई जाती हैं? ये वही आत्माएं हैं जो संगम युग में बीज रूप स्टेज धारण करती है, वो सतयुग में भी 16 कला संपूर्ण पाठ बजाती है देवात्माओं के बीच में, और त्रेता में वही आत्माएं क्षत्रिय राजा राम के कुल में राम की डायनेस्टी चलती है। क्या 13 जन्मों में, इसलिए उसका नाम ही है त्रेता युग। क्षत्रिय वर्ण की भी स्थापना होती है कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में, भगवान आकर के वो वर्ण की भी रचना करते हैं। और चौथा वर्ण जिसे कहते हैं वैश्य वर्ण, विशेष। क्या विशेष माने? जिसमें वैश्य भरे हुए हैं, विकार भरे हुए हैं। वैश्य वैश्य नहीं रहते, वो देवताएं भी है वायसलेस नहीं रहते, विधर्मी धर्म पिताओं के और उनकी हुजूम के हुजूम, उन धर्म पिताओं के जो फॉलोअर्स आते हैं, क्या करोड़ों की तादाद में जल्दी से जल्दी उतरते हैं। क्या उन हुजूम के प्रभाव से प्रभावित होकर के ये देवात्माएं भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये तो हिस्ट्री कहती है कि भारतवासी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, दूसरे धर्म वाले जो पक्के होते हैं धर्म पिताओं के पीछे पीछे आने वाली आत्माएं वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होते, वो अपने धर्म के पक्के होते हैं। है धर्म पिता ने, है धर्म पिता ने जो सुप्रीम सोल बाप ने जिस प्रैक्टिकल साकार तन में आकर के राजयोग सिखाया था, उस राजयोग का गिरती कला की स्टेज का अनुभव करते हैं और वो भी राजा बनते हैं। उनको गिरती कला का राजा बनाने का निमित्त कौन बनता है? निमित्त सुप्रीम सोल गॉड फादर नहीं बनता है, वो तो स्वर्ग के राजाएं तैयार करता है। क्या और स्वर्ग से भी ऊंची स्टेज जिसे कहा जाता है बैकुंठ, जिसका गायन इस्लामियों में भी है। क्या वो जन्नत क्रिश्चियंस में भी है पैराडाइज, क्योंकि वो धर्म पिताएं जो पवित्र आत्माएं आती हैं आत्मलोक से, वो निष्पाप आत्माएं होकर के गई हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच से। क्योंकि भगवान बाप आते हैं सारी मनुष्य सृष्टि की जो भी धर्म की आत्माएं हों, क्या सबका उद्धार करते हैं। क्या उस साकार तन के द्वारा सबका गाइड बनते हैं, सबको लिबरेट करते हैं और सारी मनुष्य सृष्टि को कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति जरूर मिलती है। तो जो भी आत्मा आत्मलोक से आती है, क्योंकि पवित्र होकर के आत्माएं गई थी जब चतुर्थ विश्व युद्ध हुआ था, सारे विश्व का सारी दुनिया का संहार हुआ था, उस एटमिक विश्व युद्ध में सभी प्राणी मात्र ने अपना शरीर छोड़ करके कहां स्थान ग्रहण किया? उसी सुप्रीम एबोड
सोल वर्ल्ड आत्मलोक में, जिसे मुसलमान अर्श कहते हैं कि खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। आज तो है भारतवासी ऋषि मुनियों के चक्कर में आकर के सारी दुनिया क्या समझने लगी, क्या है कि आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो वो बात भूल गए कि आत्मा तो परम पवित्र चीज है। वो परम पवित्र आत्मा जिससे जब इस धरणी पर आकर के पार्ट बजाती है, तब पहले सात्विक और बाद में रजो से गुजरते हुए तामसी बनती है। ये इस जो धरणी है ना, जिस धरणी रूपी रंगमंच पर प्राणी मात्र पार्ट बजाते हैं, उस धरणी के प्रभाव से प्रभावित होकर के सारी दुनिया इन चार अवस्थाओं से पसार होती। तीन गुण मुख्य हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमो। और भगवान क्या है? है जो भगवान जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, गर्भ से जन्म ही नहीं लेता। क्या गर्भ से जन्म ही नहीं लेता तो प्रभावित ही नहीं होता। जो भी धर्म पिताएं सृष्टि पर आए, उस सुप्रीम सोल गॉड फादर के अलावा वो सब प्रभावित हो, एक दूसरे से प्रभावित होते रहते, एक दूसरे का संग का रंग लेते रहते हैं। लेकिन वो सुप्रीम सोल में ये बात नहीं है, क्योंकि वो उसका अपना शरीर है ही नहीं, वो गर्भ से जन्म लेता ही नहीं, तो वो तो सदा सत्य है। क्या कभी भी रजोगुण में नहीं उतरता, कभी तामसी नहीं बनता, भले कलयुग के अंत में आता है, और पतित से पतित, तमोप्रधान से तमोप्रधान, पत्थर बुद्धि मनुष्य में आता है, जिसको अभी अभी कोई बात बताओ और अभी अभी याद ही नहीं, भूल जाता है, तो क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि कहेंगे, पारस बुद्धि कहेंगे? नहीं, पत्थर ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्य भी जब तमो प्रधान बनते हैं, रजो प्रधान बनते हैं, तो बस दुनिया में अपने को भगवान साबित करते हैं। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापी है, शिवो हम। शास्त्रों में ऊंचे ऊंचे टाइटल दे रखे हैं। कौन सा टाइटल से शुरुआत होती है? कहते हैं भगवान का सबसे बड़ा साकार रूप जो है वो विष्णु देवता है। वो विष्णु देवता ने ही भगवान का रूप धारण किया है, और वो सारी दुनिया में इस सृष्टि पर टाइम टू टाइम अवतार लेता रहता है। क्या अवतरित होता है? दशा अवतार गए हुए, 22-22, 24-24 अवतार गए हुए, हिंदुओं ने भी गाए हुए हैं और जैनियों ने भी गाए हुए, और बड़े बड़े शास्त्र लिख दिए उनकी प्रशस्ति में, प्रशंसा में। अब ये नहीं समझते कि वो जो विष्णु चार हाथ वाला है, चार भुजाओं वाला, ऐसा कोई व्यक्ति होता है क्या? है? होता है? नहीं। उसका मतलब ये है कि जो ब्रह्मा है चार पांच मुखों वाला, वो ब्रह्मा अलग अलग मुखों से अलग अलग प्रकार की बातें बोल करके अलग अलग वर्णों की स्थापना करने का निमित्त बनता है। क्या? और वो चार वर्णों की सृष्टि इस सृष्टि पर तैयार हो जाती है। सुप्रीम सोल बाप आकर के हर वर्ण की उद्धार करता है,
तो हर वर्ण का रचयिता भी है साकार तन के द्वारा है। तो जो साकार तन है उसके द्वारा ही ये बात भी बोलता है कि मैं जब आता हूं तो चार वर्णों की स्थापना करता हूं षष्ठी रूपी रंगमंच पर। सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में क्षुद्र शूद्र बिगड़ करके शब्द बन गया। माना क्षुद्र कर्म करने वाले, गंदे कर्म, जानवरों की तरह कर्म करने वाले। तो ऐसे चार वर्णों की स्थापना और उनके संगम युग में जो उन्होंने जैसा पार्ट बजाया है उसी पार्ट के अनुसार उनका जन्म जन्मांतर का वो पार्ट निश्चित हो जाता है। वो आत्मा वही पार्ट बजाती है। जो क्षुद्र वर्ण में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं कलयुग में, भले ऊपर से अभी आते हैं परम धाम से आत्मलोक से, तो भी वो पहले जन्म में दुख का पार्ट तो नहीं बजाएंगे क्योंकि सत्य आत्मा आई सत्य धाम से। अरे सत्य धाम का आत्मा आने वाली सत्य को पार्टी बजाएगी ना, तो वो गर्भ से जन्म नहीं ले सकती। गर्भ से जन्म होता है कलयुग में, खास करके गुमूत का जन्म होता है, मूत से पैदा होते हैं। वो गर्भ से जन्म होता ही नहीं पहला जन्म, क्योंकि भगवान ने आकर के उनको पवित्र बनने का रास्ता बताया। नहीं भी बनते हैं तो जबरदस्ती जो विनाश का डंका बजता है रुद्र के रूप में, भयंकर रूप धारण भगवान करता है साकार तन के द्वारा, तो उन्हें बनना ही पड़ता है। क्या क्या बनना पड़ता है? देह को भूल करके पवित्र ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति में टिकना ही पड़ता है। तो ऐसी आत्माएं पहले जन्म में भी कलयुग के अंत में उतरेंगी तो सुख में ही रहेंगी, दुख नहीं भोग सकती। वो गर्भ से जन्म नहीं लेती, वो उन्हीं देवताओं में जो सतयुग से लेके जन्म लेते चले आ रहे हैं, कम कलाओं वाले देवताएं बने हैं जो कलयुग के अंत में भगवान के आने पर कम कला वाले ब्राह्मण बने थे, नीची गुरियों के ब्राह्मण बने थे, उन्हीं देवात्माओं में उन्हीं ब्राह्मण आत्माओं में प्रवेश करते। इसलिए ये हिस्ट्री में बात क्लियर है कि भारतवासी देवात्माएं ही द्वैतवादी द्वापर युग से जब दो दो धर्म दो दो राज्य से दुनिया में शुरू होते हैं, दो दो भाषाएं दो दो कुल दो दो मतें धर्म पिताओं के द्वारा, तो वो देव आत्माएं भी कन्वर्ट हो जाती है। क्या कन्वर्ट हो जाती हैं? उन उन धर्मों में चली जाती है। इसलिए भारतवासियों की संख्या पुराने से पुराने होते हुए भी देव आत्माएं उनकी संख्या देवता धर्म वालों की कम हो जाती है और दुनिया के धर्मों की संख्या बढ़ जाती है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के अनुसार चलता है। कौन से मनुष्य? वो ही मनुष्य जो ब्रह्मा की चार मुख दिखाए जाते हैं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। चार दिशाएं ना, चार दिशाओं में जो पार्ट बजाने वाली जो विशेष आत्माएं हैं वो चार धर्मों की हैं, जिनके चार बीज बनते हैं। वो ही राम के तीन भाई, राम देवी देवता सनातन धर्म का मुखिया, धर्म पिता है। और कौन? तीन और, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। वो तीनों मुख्य धर्म पिता हैं विधर्मी। क्या? विधर्मियों से प्रभावित होते हैं। उनमें बीज रूप आत्माएं भी होती हैं ऐसी, जिन पर उन दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ता है। क्या देह अभिमान से तो उतनी रची पची नहीं बनती है, लेकिन छिलका जरूर चढ़ जाता है, और वो चढ़ा हुआ छिलका इस संगम युग में प्रत्यक्ष हो जाता है। क्या उन बीज रूप आत्मों में भी पहला ग्रुप कौन सा सुधरेगा? नौ प्रकार के बीज हैं, वो भी नौ धर्मों के बीज, नौ प्रकार के, नौ नाथ द्वारे गाए हुए हैं। क्या नाथ द्वारे, जिन्होंने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नंबरवार नौ धर्मों को कंट्रोल किया है, नाथ लिया है। नथनिया डाली जाती है ना, क्या बैल को कंट्रोल करते हैं तो क्या करते हैं, नाथ डाल देते हैं। तो वो बैल तो निमित्त बनता है, उस सुप्रीम सोल बाप का आधार बनता है, क्योंकि बैल बुद्धि बनता है। क्या बैल जो है ना, किस बात के लिए गाया हुआ है? बैल गाया हुआ है ढेर सारी प्रजा पैदा करता है, है? गायों का झुंड ढेर का ढेर होगा और बैल एक होगा, तो ढेर की ढेर प्रजा करते हैं, पैदा करता है। तो सबसे जास्ती काम ही भी होगा कि नहीं होगा अंतिम जन्म, क्योंकि जब धर्म पिताएं आते हैं तो कामेंद्रियों का खेल करना सिखाते हैं, तो वो देव आत्मा है और वो बीज रूप आत्मा है, जो कि भारतवासी है, जो भारतवासी परम ब्रह्म की पहले पहले औलाद बनते हैं। पहले पहले किसकी औलाद? अम्मा की औलाद बनते हैं ना, तो बड़ी अम्मा, बड़े से बड़ी अम्मा, महत ब्रह्म जिसे कहा गीता में, तो माताओं का तो ये स्वभाव होता है। क्या क्या स्वभाव होता है? कि जिसके संग में रहेंगी बस उसी रंग में रंग जाती है। तो भारतवासी माताएं हैं ये सब, और वो चाहे बीज रूप आत्माएं हो, उन बीज रूपों का मुखिया ही क्यों न हो, और चाहे वो देव आत्माएं हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, विशेष वैश्य बने हो, या शूद्र वर्ण में उतरने वाली देवता धर्म की आत्माएं हो। देवताएं 33 करोड़ जो गाए जाते हैं ना, ऐसे नहीं कि वो सारे 33 करोड़ की आबादी वो सतयुग के पहले ही जन्म में उतर पड़ती है, नहीं, तो श्रेष्ठ आत्माएं होती है। कौन सी श्रेष्ठ आत्मा है? पहले पहले वो आत्मा है जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण राधा जैसे बच्चों को जन्म देती है, वो ही बीज रूप आत्मा है। क्या सितारों के मुआफिक चमकने वाली आत्मा है? हाँ, उनमें कोई रात के सितारे, कोई दिन के सितारे, कोई ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के प्रकाश में चमकने वाले सितारे, और कोई सूर्य के प्रकाश में चमकने वाले सितारे। दोनों प्रकार के सितारे मिलकर के जो ज्ञान की चमक मारते हैं संसार में, वो तो जड़ सितारे हैं, ये धरती के चैतन्य आत्मा रूपी सितारे हैं, वो बीज रूप आत्मा है जो सृष्टि के आदि में होती है, ऊंच से ऊंच सुख भोगने वाली, जो बताया आप इंद्रिय सुख भोगती है, 16 कला संपूर्ण से ऊंच कला का, कला कला कहेंगे ही नहीं, सूर्य की कलाएं नहीं होती हैं, तो सूर्य के बच्चों की भी कलाएं, वो कलाओं से भी परे की स्टेज का सुख होता है। वो ही आत्मा है सतयुग के आज से देवात्माओं को 16 कला संपूर्ण को जन्म देती है, और फिर उनसे नीची कला के देवताओं का जन्म होता रहता है। वो ही देवात्मा है द्वैतवादी द्वापर युग में आकर के, ज्यादा नीचे कौन गिरेगी, ज्यादा नीचे वही गिरते हैं जो बीज हैं, ऊंचते ऊंच पाप के बच्चे हैं। दुनिया में ऐसे होता है ना कि कोई ऊंचे राजा का बच्चा हो है? और साधारण प्रजा के बच्चे हो, कोई साहूकार के बच्चे हो, और वो सारे बच्चे आपस में खेलते हैं और खेलते खेलते कुसंग में आ गए बाय चांस, तो ज्यादा कौन सा बिगड़ेगा? हाँ, जो ऊंचते ऊंच बाप का बच्चा है वो सबसे जास्ती बिगड़ेगा। तो वो ही बीज रूप आत्मा कलयुग के अंत में आकर के सबसे जास्ती बिगड़ जाती है, क्योंकि उनमें वो भी बीज शामिल हैं जो सत्यु वो कलयुग के अंत में आकर के बीज बन करके आखिरी धर्म जो दुनिया में गाया जाता है धर्म निरपेक्ष राज्य वाला क्या आर्य समाज, उसके बीज बन करके उन आत्माओं को जन्म देने के निमित्त बनते हैं। उनके बाबा के रूप में, बाप के रूप में भी नहीं, माता के रूप में वो निमित्त बनते हैं जो सतयुग में कम कलाओं वाले नारायण बनते हैं। जैसे क्रिश्चियंस में गद्दियां चली ना, किंग एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण बनने वाली कृष्ण की आत्मा है ना, है उसकी भी 9 डिनेस्टियां चलती है। क्या एक डिनेस्टी तो उसके बाप की, वहां से डिनेस्टी शुरू हुई ना, और बाकी 8-16 कला संपूर्ण से कलाएं गीते गिरते वो 14 कलाओं वाला अंतिम नारायण बनता है। 14 कलाओं से जब नीचे उतरते हैं तो फिर त्रेता युग कहा जाता है, जहां 13 जन्म होते हैं राम की डायनेस्टी में। तो वो आत्माएं जो बीज रूप आत्माएं बनती हैं टोटल, उनमें 9 ग्रुप तैयार होते हैं 12-12 के, 12×12×9 कितने हुए 108। उन 108 में से 8 तो साक्षात भगवान ज्ञान सूर्य जो साकार तन में आता है उसके सर के ऊपर विराजमान दिखाए जाते हैं। किसके सर के ऊपर? कहते ना शिव शंकर एक है, हाँ व्यक्तित्व रूप में तो एक ही है लेकिन आत्माएं और नाम और काम अलग अलग हैं, ये एक ही है। अरे शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, कल्याण ही करेगा या किसी को दुख देगा? दुख देना तो अकल्याण हो गया। और शंकर, शंकर तो सारी दुनिया का विनाश करता, तो सारी दुनिया दुखी होती है, हाय हाय करके मरती है, है एक जैसी बनती है। तो वो जो 8 हैं जो सर के ऊपर विराजमान है, वो फिर भी आस्तिक जो धर्म है भगवान को मानने वाले, चाहे साकार निराकार दोनों रूप में मानते हो, चाहे साकार रूप में है साकार रूप में मानते हो और चाहे साकार निराकार रूप में मानते हो, मानते तो हैं, साकार को भगवान मान करके जो आस्तिक धर्म वाली आत्माएं हैं कोई भी धर्म की हो, उन धर्मों के बीज बनते हैं कलयुग के अंत में। वो धर्म आते रहते हैं, आते हैं ना, जैसे सिख धर्म कब आता है? मध्यांत में आता है ना कलयुग में। और आर्य समाज जिनका अभी राज्य चल रहा है प्रजातंत्र राज्य, वो भी, परंतु वो आर्य समाज धर्म को नहीं मानते। क्या वो कहते हैं ऐसा राज्य चलाओ जिसमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं, धर्म निरपेक्ष राज्य, क्या हमें धर्म वर्म से कोई वास्ता नहीं। क्यों क्यों नहीं वास्ता? क्योंकि जो धर्म है वो अंधश्रद्धा सिखाते हैं। अरे अरे हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आकर के, जो मुसलमानों में भी गाया जाता है, क्या क्या गाया जाता है, है? अरे कि खुदा ने आकर के जन्नत बनाई इस दुनिया में, है, और जन्नत में देव आत्माएं राज्य करती है, सुख भोगती है, तो उसको भी वो क्या कर देते हैं, है? और तो कोई चीज नहीं, अरे वो कोई चीज नहीं तो हेवन कैसे स्थापन कर दिया, वो कोई चीज नहीं तो जन्नत कैसे स्थापन करता है, उसके सिवाय तो कोई धर्म पिता ने हिस्ट्री में जन्नत स्वर्ग या हेवन स्थापन ही नहीं कर पाया। उसके जो बच्चे हैं डायरेक्ट सन्मुख बैठ करके ज्ञान लेने वाले, वो नंबर वार बनते हैं 108, या 9 धर्मों के बीज 12 के ग्रुप में, और उनकी सहयोगी जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, वो राजाएं अकेले तो थोड़ी राज्य चलाते होंगे, उनके जो अधिकारी होंगे नंबर बार, वो भी तो साथ में होंगे ना, तो वो 12 का ग्रुप के साथ साथ फिर वो फॉलोअर्स भी हैं नंबर बार, तो वो टोटल मिला के 108 बीज रूप आत्माएं जो हैं, वो निमित्त बनती हैं, क्या, जो आखिरी ग्रुप है ना, वो भी आर्य समाजियों को जन्म देने वाला बीज है, उनका बाबा बन के प्रत्यक्ष होता है, क्या, किसका बाबा, जैसे आर्य समाज है, आर्य समाज का धर्म पिता महर्षि दयानंद, वो बाप हो गया, उस बाप का भी बाप बनता है, क्या, और उस बाप का भी बाप सुप्रीम सोल जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, जिसका नाम भारत या गीता में अर्जुन का है, वो उसका भी बाप बनता है, ऐसे हर धर्म में चलता है, तो वो परबाबा हो गया, क्या, बाप का बाप, फिर उसे कहेंगे ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर का भी बाप, उसे कहेंगे परबाबा, तो वो आत्मा है। आखिरी ग्रुप की बात बताई, जो आर्य समाज में आकर के भगवान को साकार रूप में पहले तो मानते ही नहीं है, निराकार को ही भगवान मानते हैं, और दूसरी बात, निराकार को भगवान मानने वाले भी उनमें से आधे निकल पड़ते हैं जो निराकार को भी भगवान नहीं मानते, एकदम नास्तिक, तो वो ग्रुप जो है उनके भी तो जन्म देने वाले कोई होंगे ना, बीजों में उनके बीज होंगे या नहीं होंगे, वो भी बीज होते हैं, तो इस तरह वो बीज रूप आत्माएं ठेठ कलयुग के अंत में आकर के फिर अपना पार्ट स्पेशल बजाती है, क्या, इसे महर्षि दयानंद प्रवेश करेगा ना जिसमें, तो जिसमें प्रवेश करेगा वो भारत की देवात्मा है या कोई दूसरी आत्मा, भारत की देवात्मा होती है, और उसको फॉलो करने वाले जितने भी थे सतयुग के अंतिम पीढ़ी में, वो सारे के सारे 2 करोड़ की तादाद के बन जाते हैं अंतिम पीढ़ी में, है? वो 2 करोड़ आत्माएं जो हैं, वो निमित्त बन जाती हैं उस धर्म की स्थापना, और उनमें बार बार जन्म बाई जन्म जितने भी जन्म हो उस प्रजातंत्र सरकार में या आर्य समाधि में ऊपर से आने वाली आत्मा प्रवेश करती है। ऐसे समझ सकते हैं कि द्वैतवादी द्वापर युग से ये 33 करोड़ देवताएं ही कलयुग के अंत तक निमित्त बनते रहते हैं, जिनमें ऊपर से आने वाली 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं टाइम टू टाइम बार बार प्रवेश करती है और धर्म स्थापन होते। ओम शांति।